नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। डेविड जेनिंस की सिस्टमोलॉजी एक व्यावहारिक बिजनेस प्रबंधन पुस्तक है, जिसका उद्देश्य मालिक पर अत्यधिक निर्भर छोटे और मध्यम व्यवसायों को दोहराए जा सकने वाले स्पष्ट और टीम द्वारा संचालित संचालन में बदलना है। पुस्तक का केंद्रीय प्रश्न सीधा है, यदि मालिक कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित हो जाए तो क्या काम, ग्राहक सेवा और निर्णय उसी भरोसेमंद ढंग से चलते रहेंगे। जेनिंस अपने उद्यमी अनुभव के आधार पर तर्क देते हैं कि अव्यवस्था, बार बार होने वाली गलतियां और हर निर्णय के लिए मालिक की जरूरत केवल मेहनत की समस्या नहीं बल्कि अधूरे सिस्टम की समस्या है। यह पुस्तक सिस्टम बनाने को भारी दस्तावेजी परियोजना मानने के बजाय सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रवाहों से शुरू होने वाली क्रमिक प्रक्रिया के रूप में रखती है। इसका ढांचा 4 परिपक्वता स्तरों और 7 चरणों में व्यवस्थित है, इसलिए यह सिद्धांत मात्र नहीं देती बल्कि प्राथमिकता तय करने, जिम्मेदारी सौंपने, काम की जानकारी निकालने, उसे व्यवस्थित करने और निरंतर सुधारने का कार्यकारी मार्ग प्रस्तुत करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, मालिक निर्भरता को व्यावसायिक जोखिम के रूप में पहचानना। सिस्टमोलॉजी का मूल तर्क यह है कि किसी व्यवसाय की सबसे बड़ी छिपी कमजोरी उसका मालिक या कोई एक अनिवार्य कर्मचारी हो सकता है। जब बिक्री, ग्राहक संबंध, गुणवत्ता जांच, समस्या समाधान या भुगतान की जानकारी किसी एक व्यक्ति के दिमाग में सीमित रहती है तो संस्था वास्तव में व्यक्ति की उपलब्धता पर चलती है। जेनिंस इसे की पर्सन डिपेंडेंसी कहते हैं। इसका परिणाम केवल मालिक की थकान नहीं है। नए कर्मचारी धीरे सीखते हैं, ग्राहक अनुभव असंगत होता है, छुट्टी लेना कठिन बनता है और विस्तार के साथ त्रुटियां बढ़ती हैं। किसी संभावित खरीदार के लिए भी ऐसा व्यवसाय कम भरोसेमंद दिखाई देता है क्योंकि उसके परिणाम हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। पुस्तक इस समस्या को कर्मचारियों की क्षमता पर दोषारोपण से नहीं जोड़ती। इसकी दृष्टि में सक्षम लोग भी असंगत परिणाम देंगे यदि काम करने का साझा तरीका, अपेक्षित गुणवत्ता और निर्णय की सीमा स्पष्ट न हो। दस्तावेजीकृत सिस्टम व्यक्ति की विशेषज्ञता को समाप्त नहीं करता बल्कि उसे संगठन की संपत्ति में बदलता है। इस तरह मालिक का काम हर छोटी समस्या का उत्तर देना नहीं बल्कि ऐसे वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें उत्तर खोजे, सिखाए और दोहराए जा सके। यही बदलाव मालिक को दैनिक संचालक से व्यवसाय का रणनीतिक नेता बनने की संभावना देता है। दूसरा, 4 स्तरों से सिस्टम परिपक्वता का वास्तविक आकलन। जेनिंस व्यवसायों को सिस्टमाइजेशन के 4 स्तरों में देखते हैं, सर्वाइवल, स्टेशनरी, स्केलेबल और सेलेबल। सर्वाइवल स्तर पर व्यवसाय मुख्यतः मालिक की ऊर्जा से चलता है। काम पाने, काम करने, बिल बनाने और भुगतान वसूलने का चक्र उसी व्यक्ति पर टिका होता है। इस स्टेशनरी स्तर पर कुछ सक्षम कर्मचारी और उपयोगी प्रक्रियाएं मौजूद होती हैं, लेकिन वे लोगों के अनुभव और स्मृति में बंद रहती हैं। इसलिए किसी कर्मचारी के जाने या नई टीम के आने पर प्रदर्शन अस्थिर हो सकता है। एक स्केलेबल स्तर पर मुख्य प्रक्रियाएं लिखित या रिकॉर्डेड रूप में उपलब्ध होती हैं, लेकिन उन्हें खोजने, इस्तेमाल करने या अद्यतन रखने के उपकरण बोझिल हो सकते हैं। पुस्तक का अंतिम लक्ष्य सेलेबल स्तर है। इसका अर्थ केवल कंपनी बेच देना नहीं बल्कि ऐसा संचालन बनाना है जिसमें परस्पर जुड़े सिस्टम स्पष्ट परिणाम देते हों और लोग उन्हें लगातार बेहतर बना सकें। इस वर्गीकरण का मूल्य निदान में है। यह मालिक को यह भ्रम छोड़ने में मदद करता है कि कुछ दस्तावेज होने का अर्थ पूर्ण सिस्टमाइजेशन है। साथ ही यह हर व्यवसाय को एक समान अंतिम रूप देने का आग्रह नहीं करता। व्यवसाय अपनी वर्तमान निर्भरता, जोखिम और विकास लक्ष्य के आधार पर अगला उचित कदम चुन सकता है। इस कारण ढांचा सुधार को एक विशाल, अस्पष्ट परियोजना के बजाय मापने योग्य यात्रा बनाता है। तीसरा, क्रिटिकल क्लाइंट फ्लो से पहले किन सिस्टमों को चुनना है। सिस्टमोलॉजी की व्यावहारिक शक्ति इसकी प्राथमिकता पद्धति में है। जेनिंस के अनुसार व्यवसाय को शुरुआत में हर प्रक्रिया लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रयास अक्सर इतना बड़ा हो जाता है कि टीम शुरुआत ही नहीं कर पाती। इसके बजाय पुस्तक क्रिटिकल क्लाइंट फ्लो पर ध्यान केंद्रित करती है, यानी आदर्श ग्राहक की उस यात्रा पर जिसमें उसका ध्यान आकर्षित करने से लेकर पूछताछ, बिक्री, भुगतान, ऑनबोर्डिंग, मुख्य सेवा या उत्पाद की डिलीवरी और आगे की वापसी तक के प्रमुख चरण शामिल हैं। इस यात्रा को संक्षेप में नक्शे पर रखने से यह दिखाई देता है कि ग्राहक अनुभव किन बिंदुओं पर टूट सकता है और कौन से कार्य सीधे राजस्व, गुणवत्ता तथा भरोसे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि पूछताछ का उत्तर देर से मिलता है, प्रस्ताव असंगत है या सेवा शुरू करने की प्रक्रिया अस्पष्ट है, तो पहले इन्हीं सिस्टमों को पकड़ना अधिक उपयोगी होगा। यह 80-20 जैसी प्राथमिकता सोच का प्रयोग है जिसमें कम संख्या के महत्वपूर्ण सिस्टम अधिक प्रभाव पैदा करते हैं। यह दृष्टि सिस्टमाइजेशन को प्रशासनिक कार्य से ग्राहक केंद्रित कार्य में बदलती है। टीम केवल फाइलें नहीं बना रही होती, बल्कि ऐसे निर्णायक क्षणों को भरोसेमंद बना रही होती है जिनसे ग्राहक का अनुभव और व्यवसाय की आय तय होती है। साथ ही रचनात्मक काम को मशीन की तरह बांधने के बजाय दोहराए जाने वाले सहायक कार्यों को स्पष्ट करके रचनात्मक निर्णयों के लिए जगह बनाई जा सकती है। चौथा, डिफाइन से ऑप्टिमाइज तक 7 चरणों की कार्यान्वयन श्रृंखला पुस्तक का 7 चरणों वाला ढांचा सिस्टम बनाने के काम को क्रम देता है। डिफाइन, असाइन, एक्सट्रैक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट, स्केल और ऑप्टिमाइज। डिफाइन में महत्वपूर्ण सिस्टम चुने जाते हैं ताकि प्रयास बिखरे नहीं। असाइन में विभागों, भूमिकाओं और जिम्मेदार व्यक्तियों का मानचित्र बनाया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी प्रक्रिया का मालिक कौन है और उसकी जानकारी किसके पास है। एक्सट्रैक्ट चरण में काम करने वाले लोगों से व्यावहारिक ज्ञान निकाला जाता है। जेनिंस विशेष रूप से 2 व्यक्तियों की जोड़ी का सुझाव देते हैं, जिसमें एक व्यक्ति काम समझाता या प्रदर्शित करता है और दूसरा उसे रिकॉर्ड या दस्तावेज करता है। इसके बाद ऑर्गेनाइज चरण में सामग्री को ऐसे साझा स्थान पर रखा जाता है जहां टीम उसे आसानी से खोज और उपयोग कर सके। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि सॉफ्टवेयर स्वयं समाधान नहीं है, क्योंकि खराब या अप्रयुक्त प्रक्रिया को किसी मंच पर रख देने से उसका उपयोग नहीं बढ़ता। इंटीग्रेट चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सिस्टम को संस्कृति और रोजमर्रा की आदतों से जोड़ा जाता है। इस स्केल में विकास के लिए नए आवश्यक सिस्टम जोड़े जाते हैं, जबकि ऑप्टिमाइज में टीम अनुभव और परिणामों के आधार पर सुधार करती रहती है। इस क्रम का महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह दस्तावेज बनाना और सिस्टम अपनाना अलग समस्याएं मानता है। लिखित निर्देश तभी उपयोगी हैं जब जिम्मेदारी, पहुंच, व्यवहार और सुधार की व्यवस्था साथ में हो। अंत में सिस्टम्स चैंपियन और उपयोगी सिस्टम संस्कृति की भूमिका। जेनिंस का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि व्यवसाय का मालिक अक्सर सिस्टम लिखने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं होता। मालिक के पास व्यापक जानकारी हो सकती है, पर वह व्यस्त निर्णयों में उलझा हुआ या अपने काम को सहज ज्ञान की तरह करने का अभ्यस्त होता है। इसलिए पुस्तक सिस्टम्स चैंपियन जैसी समर्पित भूमिका पर जोर देती है। यह व्यक्ति सिस्टमाइजेशन की गति बनाए रखता है, सही लोगों से जानकारी निकलवाता है, दस्तावेजों की गुणवत्ता और पहुंच पर ध्यान देता है तथा टीम में उपयोग की आदत बनाता है। यह भूमिका केवल नोट्स लेने वाले व्यक्ति की नहीं है, इसे प्रक्रियाओं के पीछे अपेक्षित परिणाम समझने होते हैं ताकि दस्तावेज महज लंबी सूची न बन जाए। अच्छा सिस्टम यह बताता है कि काम कब शुरू होता है, किसकी जिम्मेदारी है, किन उपकरणों या सूचनाओं की जरूरत है, गुणवत्ता का मानक क्या है और अपवाद आने पर क्या करना है। फिर भी पुस्तक कठोर अनुपालन को अंतिम लक्ष्य नहीं मानती। कर्मचारियों को सिस्टम का पालन करने के साथ उनकी कमियां बताने और सुधार सुझाने का अवसर मिलना चाहिए। यही सिस्टम संस्कृति बनती है। टीम की भाषा यह नहीं रहती कि प्रक्रिया एक अतिरिक्त नियंत्रण है, बल्कि यह कि यही काम करने का विश्वसनीय तरीका है। आधुनिक संदर्भ में रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन और AI जैसे उपकरण दस्तावेजीकरण को तेज कर सकते हैं, लेकिन पुस्तक की मूल चेतावनी बनी रहती है, पहले स्पष्ट और उपयोगी प्रक्रिया, फिर तकनीक। तकनीक को मानव ज्ञान, जवाबदेही और निरंतर सुधार का विकल्प नहीं समझना चाहिए। निष्कर्ष में सिस्टमोलॉजी उन व्यवसाय मालिकों, प्रबंधकों और संचालन प्रमुखों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनकी संस्था कुछ प्रमुख लोगों की स्मृति, उपलब्धता और व्यक्तिगत निर्णयों पर चलती है। यह उन पाठकों के लिए भी उपयुक्त है जिन्होंने पहले प्रक्रियाएं लिखने की कोशिश की लेकिन भारी दस्तावेजों, कम उपयोग या टीम के प्रतिरोध के कारण प्रयास छोड़ दिया। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह शुरुआत को छोटा और स्पष्ट बनाती है। हर काम को सिस्टमाइज करने के बजाय पाठक पहले ग्राहक यात्रा के निर्णायक बिंदु चुन सकता है, जिम्मेदारियां स्पष्ट कर सकता है और वास्तविक काम करने वालों से ज्ञान निकाल सकता है। माइकल गर्बर की द ई मिथ रिविजिटेड जैसे ग्रंथ मालिक से स्वतंत्र व्यवसाय की आवश्यकता को प्रभावशाली ढंग से स्थापित करते हैं। सिस्टमोलॉजी की अलग पहचान उस विचार को लागू करने की व्यवस्थित कार्यविधि में है। इसके 4 परिपक्वता स्तर पाठक को अपनी स्थिति पहचानने देते हैं और 7 चरण बताते हैं कि चयन, जिम्मेदारी, दस्तावेजीकरण, उपयोग और सुधार को किस क्रम में संभालना है। सिस्टम्स चैंपियन की अवधारणा भी महत्वपूर्ण भेद है, क्योंकि यह मानती है कि बदलाव का काम मालिक अकेले नहीं कर सकता। पुस्तक को कठोर नियम पुस्तिका की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, विशेषकर रचनात्मक या तेजी से बदलते क्षेत्रों में। इसका उपयोग ढांचे के रूप में अधिक सार्थक है जहां दोहराव वाले और जोखिमपूर्ण कार्य स्पष्ट किए जाएं, जबकि विशेषज्ञ निर्णय के लिए लचीलापन बचा रहे। इस संतुलन के कारण यह केवल दक्षता की पुस्तक नहीं बल्कि संस्थागत ज्ञान, बेहतर ग्राहक अनुभव और दीर्घकालिक व्यावसायिक स्वतंत्रता की व्यावहारिक मार्गदर्शिका बनती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डेविड जेनिंस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।